ये आकाशवाणी है, अब आप वैष्णवी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने विश्व की सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, जिना ब्रिज और देश का पहला केबल पुल आधारित अंजी ब्रिज का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने 44,000 करोड़ रुपए की लागत की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कटरा में कहा कि अत्याधुनिक चिनाब ब्रिज जम्मू और श्रीनगर के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश अब रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। श्री मोदी ने कहा कि चिनाब और अंजी ब्रिज जम्मू कश्मीर के लिए समृद्धि के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा। श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित 2,000 से अधिक परिवारों के घरों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से भारत की विनिर्माण क्रांति में शामिल होने की अपील की। श्री मोदी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भारत के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को और आत्मनिर्भरता पर चर्चा कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी के स्तर से ऊपर उठकर नव मध्यम वर्ग में शामिल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से फोन पर बातचीत में उन्हें चुनाव में जीत पर बधाई दी। श्री मोदी ने कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध सदैव प्राथमिकता में रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों से संयुक्त मुलाकात के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ते आर्थिक संबंधों, विस्तारित संपर्क, उन्नत रक्षा और सुरक्षा सहयोग तथा नए और उभरते क्षेत्रों में व्यापक सहयोग के लिए अपने विचार प्रकट किए। मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उम्मीद केंद्रीय पोर्टल के शुभारंभ की सराहना की है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये वक्फ संपत्ति प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता लाएगा, जिससे समुदाय की वंचित महिलाओं और बच्चों को लाभ होगा।
आज जब हमने पोर्टल लॉन्च किया तो इसका नाम है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, और ये उम्मीद है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एफिशिएंसी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट का जो थीम के साथ काम कर रहे हैं। इसमें देश में जितना वक्फ प्रॉपर्टी है आज तक जो रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, आइडेंटिफाइड है, उसका आज से जितना मुतवालीस है उनको कहा गया कि पोर्टल पे अपलोड करना शुरू कर देंगे, और 6 महीने का वक्त हमने दिया है।
भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र को अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों NBFC MFI के लिए क्वालिफाइंग परिसंपत्ति सीमा को 75% से घटाकर 60% कर दिया है। इन संशोधित मानकों के अनुसार NBFC MFI को अब अपनी कुल परिसंपत्तियों को कम से कम 60% क्वालिफाइंग परिसंपत्तियों के रूप में निरंतर आधार पर बनाए रखना होगा। यदि कोई संस्था लगातार 4 तिमाहियों तक सीमा को पूरा करने में नाकाम रहती है तो उसे रिजर्व बैंक के समक्ष एक सुधार योजना प्रस्तुत करनी होगी। इस बदलाव से NBFC MFI को अपने ऋण देने वाले आधार को व्यापक बनाने, ऋण शर्तों को अनुकूल बनाने और वित्तीय लचीलेपन में सुधार करते हुए नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने में आसानी हो जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।